الحمد لله كفى سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، مثل چند دنوں سے اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ رمضان کا حکم تو یہی ہے کہ مومن روزہ رکھے فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک. اگر جس طرح روزے کا ایک حکم ہے، اسی طرح روزے کی ایک روح بھی ہے. اور کچھ چیزوں کو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ یہ رمضان کے مقاصد میں سے ہیں، اور یہ چیزیں رمضان کی روح ہیں، اور اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ دوسرے کو افطار کروانا ہے. اسی طرح رمضان کی روح میں سے ایک چیز جس پہ ہم گفتگو کر چکے وہ ہے رات کی عبادت. اسی طرح رمضان کی روح دعاؤں کا کرنا ہے. کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا کہ رمضان کی روح جو ہے وہ ہمدردی اور دوسروں پہ وسعت کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، کہ یہ وسعت اور ہمدردی کا مہینہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے جب وہ نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض عبادت کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو در حقیقت رمضان المبارک کا مہینہ نیک اعمال کے بڑھا دینے کا مہینہ ہے. انسان ہر چیز سے ہٹ کٹ کے نیک اعمال کو اپنی زندگی میں زیادہ لائے. کئی مرتبہ یہ نیک اعمال متواتر کرنا اس مہینے میں زیادہ کرنے سے انسان کا دل جو ہے وہ پوری طرح سے بدل بھی جاتا ہے، گناہوں سے پوری طرح سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے، عبادت کے اندر لذت آنے لگ جاتی ہے. اس لیے اس مہینے کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے. نیک اعمال میں مختلف سلاسل کے بزرگوں نے بٹن سے بند کر دیا. مختلف طریقے بیان کیے، اور ہر سلسلے کے جو بزرگ تھے انہوں نے ان اعمال کو ایسا پایا کہ جو سالک ان اعمال کو کرتا یا کرے گا تو وہ ایک پاتھ پہ چل کے، ایک راستے پہ چل کے اور اللہ کے قرب تک پہنچ جائے گا. سلسلہ علی نقشبندیہ میں بھی 6 چیزیں بیان کی گئی. یہ 6 اعمال ہیں کہ ان کے کرنے والا اگر ان اعمال کی پابندی کرے گا تو وہ اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے، گناہوں سے پاکی حاصل کر سکتا ہے، دائمی یاد اللہ کی پا سکتا ہے، دل کی ایک کیفیت کو بدل سکتا ہے. تو اس مبارک مہینے میں جہاں ہم اور اعمال کر رہے ہیں وہاں ان اعمال کی پابندی کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے، خاص طور پہ جو سالکین سلسلہ سے جڑے ہوئے ہیں، مشائخ کے ساتھ اصلاح کا تعلق ہے، وہ ان اعمال میں خوب پابندی اور خوب آگے بڑھنے کی کوشش کریں. इस मुबारक महीने में अगर ज्यादा इबादत हो गई तो इससे बढ़ के और कामयाबी नहीं है। वैसे भी ज्यादा इबादत करने वाला, उसकी कामयाबी का हाल बयान नहीं किया जा सकता। चुनांचे हदीस पाक के अल्फाज है, हदीस कुदसी से, मेरा बंदा नफली आमाल करते करते इतना मेरे करीब हो जाता है कि मैं वो आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं वो कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और मैं वो जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। तो इसलिए अमाल का करना, नेक अमाल का करना जरूरी है। और अगर मशायख के तजर्बा शुदा नेक अमाल अगर कर लिए जाए तो ये और ज्यादा फायदेमंद। सिलसिले के मामूलात में से सबसे पहला मामूल अस्तगफार है। मशायख ने फरमाया कि अस्तगफार सालिक करे 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इस्तग़फ़ार कहते हैं माफी मांगने को। आम तौर पे हम यही समझते हैं कि ये जो माफी मांगना है, इसका ये जो माफी मांगना है, ये गुनाह के बाद होता है। तो ऐसा नहीं कि माफी का मांगना सिर्फ गुनाह के बाद है, बल्कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने हमें ये सिखाया कि माफी गुनाह के बाद भी मांगी जाती है और माफी नेक आमाल के बाद भी मांगी जाती है। चुनाचे नमाज जैसा हुक्म है और नमाज जैसी इबादत है, उस इबादत के बाद अल्लाह के प्यारे महबूब ने हमें सिखाया कि हम 3 मरतबा इस्तग़फार करें। तो देखें, सिर्फ गुनाह के बाद नहीं, नेकी के बाद भी अल्लाह ने इस्तग़फार करने का हुक्म दिया। हज जैसी इबादत जिसके बारे में हदीस पाक में आया कि हज वो इबादत है, रजअत यौमिन वलदत उम्मुहू, इंसान गुनाहों से ऐसे पाक लौटता है जैसे उस दिन गुनाहों से पाक था जब उसकी वालदा ने उसको जना था। इतनी बड़ी इबादत करने के बाद अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि जब तुम ये हज मुकम्मल करके लोगों के साथ वापस लौट रहे हो, सुम्मा अफीजु मिन हैसु अफाज़ अन्नासु अस्तग़फिरुल्लाह। ये हज मुकम्मल करने के फौरन बाद जब लोगों के साथ वापस मीना की तरफ लौट रहे हो तो उस वक्त तुम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह से माफी मांगा करो। तो ये पक्की बात है, ये इस्तग़फार अल्लाह को इतना पसंद कि सिर्फ ये गुनाह के बाद करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये नेकी के बाद भी करने वाली चीज है। इस्तग़फार करने के मशायख ने मुख्तलिफ फवाइद लिखे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है, जो इंसान इस्तग़फार कसरत से करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर तंगी में से रास्ता निकाल देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन लज़िमल इस्तग़फार, कि जो इस्तग़फार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ी क़िम मख़रजा, कि जो इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी में से रास्ता निकाल देते हैं। ومن كل هم فرجا، उसको हर गम में से निजात देते हैं। वरजतहू मिन हैसु ला यहतसिब, उसको वहां से रिस्क देते हैं जहां से उसको गुमान भी नहीं हो। तो जिसने अस्तगफार को थाम लिया, वो समझ ले कि दुनिया की मुश्किलों से अपने आप को बचा लिया। इसी तरह हदीस पाक में आता है, तूबा लिमन वुजिदा फी सहीफती इस्तगफारन कसीरा, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो अपने नामाए आमाल में बहुत कसरत से इस्तगफार पाए। तो जिसने इस्तगफार कसरत से कर लिया, खुशखबरी हो कभी हकदार। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके पास एक शख्स आया और उसने आके कहा कि हजरत, दूर के इलाके से आया हूँ, हमारे इलाके में कहत हो गया है, तो कोई वजीफा बताएं कि ये मुसीबत से निजात मिल जाए। हजरत फरमाए कि तुम कसरत से इस्तगफार करो। हजरत का एक खादिम था, उसने बड़े गौर से सुना ये बात। हजरत थोड़ी देर बाद कोई एक और शख्स आया और उसने आके ये अर्ज किया कि हजरत, मेरे यहाँ औलाद नहीं होती, कोई वजीफा बयान करे, कोई वजीफा बताए। हजरत फरमाए कि तुम इस्तगफार किया करो। अब खादिम ने ये देखा कि जी, जिसके यहाँ बारिश नहीं हो रही, वो भी इस्तगफार करने का वजीफा हजरत दे रहे हैं, और जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, उसको भी यही वजीफा दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक शख्स आया, उसने कहा कि हजरत, मेरे यहाँ बहुत ही ज्यादा माशी परेशानी है, कुछ पढ़ने के लिए बताएं। हजरत ने फरमाया कि तुम इस्तगफार। आदम ने कहा कि लगता ही है कि हजरत के पास और कोई वजीफा नहीं है, बस एक ही वजीफा सबको देते रहते हैं। इतने में एक शख्स आया, कहा कि हजरत, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, मैं इस्तगफार कर लिया करो। अब जो आ रहा है उसको अल्लाह रब, उसको ये बुजुर्ग जो थे वो ये इस्तगफार ही का वजीफा दे रहे थे। खादिम ने सोचा कि हजरत शायद बस एक ही वजीफा जानते हैं, तो उसने कह दिया कि हजरत, जिसके यहाँ कहता है उसको भी आप यही वजीफा दे रहे हैं, जिसके यहाँ बारिश नहीं हो रही उसको भी यही वजीफा दे रहे हैं, जो गुनाह कर रहा है उसको भी यही वजीफा, जिसके यहाँ औलाद नहीं हो रही है उसको भी यही वजीफा। तो आपके पास बस यही एक वजीफा है क्या देने के लिए? हजरत ने फरमाया कि ये वजीफा मैंने नहीं दिया, ये वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में दिया है। कुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फार, तो तुम जब गुनाह करो तो तुम इस्तगफार करो, अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं। युरसिलिस्समा अलैकुम मिद्रारा, इस इस्तगफार करने पे अल्लाह ताला आसमानों से बारिश बरसाएंगे। वयुम्दिदकुम बि अम्वालिन व बनीन, इस्तगफार करने वाले के लिए अल्लाह ने वादा किया, अल्लाह उसकी मदद करेंगे माल के जरिए से, औलाद के जरिए से। और अल्लाह के नबी ने तो ये फरमा दिया कि हर मुश्किल में से अल्लाह रास्ता निकाल दे। रमजान मुबारक में नबी अलैहि सलात व सलाम ने जिन दो आमाल के करने का फरमाया, जिन दो वज़ाइफ के करने का फरमाया, आपने फरमाया कि तुम इस्तगफार की कसरत किया करो और अल्लाह से जन्नत में दाखिले की दुआ मांगा करो और जन्नत से पनाह मांगा करो। तो रमजान मुबारक के आमाल, नेक आमाल बढ़ाने का तरीका ये है कि इंसान कसरत से इस्तगफार करे। अगर ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने हजरत से ये सवाल किया कि अगर हजरत फर्ज करें कि दुनिया में सारे अल्लाह वाले ना रहे, कोई भी अल्लाह वाला ना हो, और एक शख्स है जो ये चाहता हो कि मैं अल्लाह का खास कुर्ब हासिल कर लूं, तो क्या उसके लिए मुमकिन है कि वो अल्लाह का खास कुर्ब हासिल कर सके? तो किताबों में लिखा है कि हजरत ने थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाया और फिर आपने फरमाया कि हाँ मुमकिन है, अगर वो कसरत से इस्तगफार करेगा तो वो अल्लाह का खास कुर्ब हासिल कर सकता। रमजान मुबारक में अपने वक्त को जाया करने की बजाय इंसान कसरत से इस्तगफार करे। क्या वईद है कि ये अमल जो है वो हमारे लिए दिल के बदलने का सबब बन जाए, मुस्तकिल तौर पे नेकी पर इस्तकामत का जरिया बन जाए, अल्लाह से मोहब्बत का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला हमें इस नेक अमल के करने की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाء वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस'अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व लिसानन ذاكر وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.